नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं
जी।
पूज्य गुरुदेव युगऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक अहम पुस्तक है, हमारी वसीयत और विरासत।
हाँ, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये।
उसी का एक अध्याय है बो एवं काटो का मंत्र, जो हमने जीवन भर अपनाया। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं।
बिल्कुल, ये सूत्र उनके जीवन का सार है, कह सकते हैं।
तो समझना ये है कि ये सिद्धांत आखिर है क्या और कैसे पूज्य गुरुदेव ने इसे अपनाया, खासकर तब जब उनके सामने संघर्ष भी था और नव सृजन का बड़ा काम भी।
हाँ, देखिए, जब पूज्य गुरुदेव हिमालय से साधना करके लौटे ना, तो उनके सामने दो बहुत बड़े काम थे।
अच्छा।
एक तो समाज में जो गलत बातें थी, मतलब अवांछनीयता जिसे वो कहते थे, उससे संघर्ष करना, और दूसरा एक उज्जवल भविष्य बनाना, उसका सृजन करना।
यानी चुनौतियां दोहरी थी।
बिल्कुल, और इन सबके लिए साधनों की जरूरत तो पड़ती ही है। आश्रम का विस्तार करना था, समाज सुधार के काम करने थे।
हाँ, जाहिर है।
लेकिन पूज्य गुरुदेव का रास्ता अलग था। उन्होंने अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा रखी ही नहीं, सब त्याग दिया और ईश्वर पर, अपनी मार्गदर्शक सत्ता पर उनका भरोसा अटूट था।
तो फिर ये सवाल तो उठता ही है कि इतने बड़े कामों के लिए साधन जुटाए कैसे गए, कहाँ से आए?
हाँ, और यहीं पर वो सूत्र आता है, बो और काटो। जब भी उनसे साधनों के बारे में पूछा गया, उनका एक ही जवाब होता था।
क्या था वो जवाब? मतलब इस सूत्र का अर्थ क्या है?
इसका सीधा सा मतलब है, जो पाना चाहते हो उसे पहले देना सीखो, उसे बोना सीखो। जैसे किसान खेत में बीज बोता है ना।
हाँ, बोता है।
एक दाना बोता है तो फसल में 100 गुने दाने वापस मिलते हैं, मक्का बाजरा कुछ भी हो। तो जो चाहिए वो पहले देना होगा। द्रौपदी का उदाहरण भी दिया है श्रोत में।
अच्छा, द्रौपदी का क्या उदाहरण है?
कि कैसे उन्होंने साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ कर दिया था जरूरत पड़ने पर, और जब उन्हें जरूरत पड़ी चीरहरण के समय, तो भगवान ने असंख्य साड़ियां दे दी।
यानी देने से ही मिलता है।
बिल्कुल, और पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ कहा नहीं, इसे जी कर दिखाया। उन्होंने अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ, अपना शरीर, अपनी बुद्धि, अपनी भावनाएं, यहाँ तक कि जो पैसा उन्हें विरासत में मिला था, वो भी
सब बो दिया।
सब बो दिया। किसमें? विराट ब्रह्म में, मतलब पूरी दुनिया, पूरी मानवता। इसे ही उन्होंने अपना खेत समझा और इसी में सब बो दिया।
तो इसके परिणाम कैसे रहे, जैसे शारीरिक समर्पण की बात करें अगर?
हाँ हाँ, शरीर को ही लीजिए। बताते हैं कि रात में वो ईश्वर का भजन करते और दिन में पूरी तरह विश्व मानव की सेवा में जुटे रहते। शरीर तो जन्म से ही कमजोर था उनका।
अच्छा।
हाँ, पर इस समर्पण का नतीजा देखिए, उनमें जीवनी शक्ति गजब की थी। 75 साल की उम्र में भी इतने मजबूत कि एक बिगड़े हुए सांड को अकेले ही काबू कर लिया था।
अरे, ये तो कमाल की बात है।
और वो घटनाएं भी है ना, जानलेवा हमलों वाली।
हाँ हाँ, मैंने भी पढ़ा है।
रिवॉल्वर चली नहीं, छोरे का वार हुआ नहीं, ये कैसे संभव हुआ? स्रोत क्या कहता है? स्रोत इसे साफ तौर पर देवी कृपा, देवी हस्तक्षेप मानता है, उनकी निस्वार्थ सेवा और श्रद्धा का फल। गुरुदेव खुद भी कहते थे कि उन्होंने अपने जीवन में सामान्य व्यक्ति से कई गुना ज्यादा काम किया, जैसे शंकराचार्य या विवेकानंद ने कम उम्र में सदियों का काम कर दिया।
सही। और बौद्धिक समर्पण, उसका क्या असर हुआ?
उन्होंने अपनी सारी मेधा, सारी बुद्धि लोक मंगल में लगा दी, और नतीजा सामने है। इतना सारा साहित्य जो उन्होंने रचा, कहते हैं उनके शरीर के वजन के बराबर साहित्य लिखा उन्होंने।
हाँ, ये तो सुना है।
और वो सिर्फ लिखा नहीं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गाइड है। फिर वो ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान बनाया।
हाँ, जहाँ अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ने का काम होता है।
बिल्कुल, और शांति कुंज की स्थापना, वो तो अपने आप में एक पूरी योजना है विश्व के कायाकल्प की। ये सब उनकी बौद्धिक क्षमता और समर्पण का ही परिणाम है।
और भावनाएं, उनका समर्पण कैसे किया?
अपनी सारी संवेदनाएं, सारी करुणा उन्होंने पिछड़े गिरे हुए लोगों को उठाने में लगा दी। जैसे शिवजी ने जहर पिया था ना संसार के लिए।
हाँ,
वैसे ही। और कमाल की बात यह कि जो उनके विरोधी थे, जिन्होंने उन पर हमले तक किए, उनके लिए भी मन में स्नेह और माफी का भाव रखा।
ये तो बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत कठिन भी।
बहुत कठिन, पर इसका फल भी उतना ही बड़ा मिला। लोगों ने उन्हें बेनतहा प्यार दिया, उन पर श्रद्धा रखी, लाखों लोग उनसे जुड़े।
हाँ, वो 2400 शक्तिपीठों की स्थापना।
जी, वो सब इसी प्रेम और समर्पण का नतीजा था। और उनकी धर्मपत्नी माताजी, वो तो हर कदम पे साथ रहीं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी, कहते हैं, अपनों की तरह उनके पास खींचे चले आते थे।
आर्थिक समर्पण की बात भी अनोखी है। अपनी सारी निजी संपत्ति, जमींदारी से मिला पैसा, पुश्तैनी जमीन, सब दान कर दिया।
हाँ, सब समाज को दे दिया, खुद व्यक्तिगत रूप से खाली हाथ रहे।
और फिर ये इतने बड़े बड़े संस्थान, गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज, ब्रह्मवर्चस्व, ये सब कैसे खड़े हुए? करोड़ों की संपत्ति बिना मांगे?
ये तो बोर काटों का चमत्कार है। श्रोत बताता है कि सब सहजता से होता गया, बिना किसी से चंदा मांगे, बिना किसी खास अपील के। लोग खुद जुड़ते गए, साधन आते गए, हजारों कार्यकर्ता और उनके परिवार, सबका खर्चा आराम से चलता रहा।
उनका सिद्धांत क्या था इसके पीछे?
सिद्धांत साफ था, इकट्ठा मत करो, बिखेर दो। मतलब अच्छे कामों में लगाते जाओ, जमा करने की मत सोचो। जो बोया वही कई गुना होकर फला।
तो अगर हम इस पूरे अध्याय का सार निकालना चाहें तो क्या कहेंगे?
सार बिल्कुल सीधा है। अगर आप निस्वार्थ भाव से बिना कुछ पाने की इच्छा रखे, अपना सब कुछ तन मन धन समय प्रतिभा दुनिया की भलाई में लगाते हैं, उसे बोते हैं, तो वो चीज कई गुना होकर आपके पास लौटती है।
सिर्फ भौतिक चीजें ही नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पैसे या साधनों की बात नहीं है। इससे आपको आत्मिक शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है, और वो जो अदृश्य दैवीय मदद है ना, वो भी मिलती है। ये कर्म फल सिद्धांत का एक प्रैक्टिकल रूप है।
बहुत गहरा सिद्धांत है, सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है, शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आए।
जी पूछिए।
कि आज का जो युग है, जहां लोग अक्सर पहले मैं सोचते हैं, आत्म केंद्रित है, क्या ऐसे में अपना सब कुछ बोने का ये दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है? क्या ये आज भी काम कर सकता है?
ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है।
और अगर हाँ, तो कोई व्यक्ति से अपने जीवन में, चाहे छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर, कैसे अपना सकता है, ये सोचने वाली बात है।